Vrindavan, they became against, they wanted to kill him. One day when he was circumambulating Vrindavan in very morning, somewhat in some andhakar, dark, they wanted to kill him in a very dark grey grove. When he reached there, they were waiting with dagger or anything to cut him down. But they at once saw that Vishwanath Chaturvedi Thakur was not there. There was a very teenager child with his any friend, girlfriend, and she was also gopi, and she was also gopi, both. And they were picking some flowers. The persons who were invited to him, they asked, "Oh, Lali, Lali means little girl, I saw that Vishwanath Chaturvedi Thakur was coming, but where he has gone?" Then she began to smile and told, "I am coming for picking flowers." And at once he saw that there was not Vishwanath Chaturvedi, that little teenager girl, only Vishwanath Chaturvedi was going there. Oh, at once they know, "Oh, Vishwanath Chaturvedi Thakur, yes, Siddha Mahapurush." What is Siddha Mahapurush?
Perfected and liberated personality.
Huh? So he is a gopi, surely, in the guidance of Rupa Goswami, Rupa Manjari. So they beg pardon and they beg his
forgiveness.
And thus they were all. What?
They did pronounce him.
After that, you know that this Vishwanath Chaturvedi Thakur has sent his disciple Baldev Vidyabhushan to Jaipur to defeat the arguments of others, especially of Sri Sampradaya, Ramanu Sampradaya. They were objecting that Radha is not married wife of Krishna, so she is not with Krishna. Is worshipping Krishna alone or with Rukmini or Satyabhama, not with Radhika. And Gaudiya Vaishnava is no Sampradaya. He is out of Sampradaya, no authentic Vaishnava. There are no any authentic Vedanta, Sutra, Bhashya or anything. Then, by the order of Vishwanath Thakur, went there and he cut the ornaments of all these bogus Vaishnavas and established Srimati Radhika with Krishna, and he at once made Brahma Sutra Bhashya, Govinda Bhashya, and so, and they at once were turned, and thus he conquered them and returned to Vrindavan. Vishwanath Chaturvedi, who had compiled so many books like Ragbhatma Chandrika, Bhakti Swami Sindhu, Ujjwal Neelmani, Krishna Bhavana Mishra, and explained so many books, authentic books, explanation, Bhashya and Tika of Gita also, that I have translated and it has been published in Hindi, and very soon it will come in English also. Very authentic, very good book. I have published the books of Bhakti Vinod Thakur and Vishwanath Chaturvedi Thakur, both. And they are bona fide Vaishnavas. And in very simple language, they have given all the idea of Mahaprabhu and Rupa Goswami. So if you want to do bhakti, then you can go through all these books. They will help more. Or Gita, first Swamiji Gita as it is, he has given so many things for ordinary persons, those who are interested, basic and primary principles. But if you read this, oh, actually you are very enlightened. And you will now understand what Swamiji wanted to give in his explanation. Then you can, otherwise you cannot know. Go.
Hare Krishna. Jnani lo premo dharma. Thank you. Thank you.
भारत के वृंदावन से मथुरा से निकलकर पूर्वी विश्व के मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के बहुत से ऑस्ट्रेलिया के प्राय सभी बड़े बड़े शहरों में और वहाँ तक के सिलसिले में हम लोग आए। यहाँ भी हम लोगों ने नदी में और सुबह में लंबासा में भी कुछ प्रचार कर यहाँ आए हैं। विशेष करके हम हिंदू भारत के प्रवासियों से मिल करके बड़े खुशी हो रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, भारतीय जैसे सभी लग रहे हैं। दो एक बातें कहने का अवसर है इसी में कहूँगा। यह तो आज हम लोगों के महाप्रभु के परिकरों में आज अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव दिवस आज से 500 वर्ष पहले कृष्ण श्रीमती राधिका जी के प्रेम भाव को लेकर जगत को कुछ प्रेम की शिक्षा देने के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए नवदीप धाम में पधारे थे। उनके परम परिकरों में अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार करे जाते हैं। आज उनका आविर्भाव खुशी ये एक वैदिक सत्य है, नित्य सत्य है। कोई चीज माने या ना माने, भगवान है या नहीं बहुत दूर की बात, किंतु एक चीज सत्य है जिसको सभी धर्मी विधर्मी जो कुछ हो उसको मानने के लिए बात है कि जगत में मृत्यु जरूर है, इसको डिनाई कोई नहीं कर। इसलिए मृत्यु जरूर जगत में एक सत्य है। और दूसरी बात कि जगत में ये भी सत्य है कि जो जन्मे हैं मरना तो जरूर पड़ेगा, किंतु उनको जरूर बूढ़ा होना होगा, जब भी बचे गए तो बूढ़ी होना होगा। और बहुत से प्रॉब्लम, बुढ़ापे का दुख और संसार में तरह तरह की के कष्ट हैं, रोग हैं, इसको भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। और ये जगत आया कहां से? बुद्धिमान पुरुष वह है जो यह सोचता है कि आज ऐसा काम करूं जैसे दिन में कोई दुख ना आए, किंतु उससे भी वो व्यक्ति सुखी है जो ये विचार करता है कि हमारे जीवन में कोई दुख ना आए। और उससे भी वो सुखी है और बुद्धिमान कहलाएगा जो आने वाले जन्मों में भी हम कभी भी दुखी ना सब समय सुखी। अभी देखिए, अभी जिस स्टेज में आप लोग हैं, हो सकता है कि आप अभी सुखी हों, किंतु एक दिन सबको जरूर बुरा होना होगा। आंखें कमजोर हो जाएंगी, दांत भी कमजोर हो जाएंगे, केश श्वेत हो जाएंगे, अंत में लकड़ी पकड़ करके चलना पड़ेगा, अंत में यह शरीर छोड़ देना। जिस समय छोड़ देना पड़ेगा उसमें क्या करेंगे? एक राजा था, बहुत धनी मानी था, प्रकार सुखी था। उसकी स्त्री भी बहुत बुद्धिमती और बड़ी रूपवती गुणवती थी, वो भी बहुत था। उसके लड़के भी बड़े सुशील थे। एक दिन एक संत आया उनके पास में और कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, जिसे आया होगा तो कुछ मांगने के लिए आया होगा। आजकल के जितने भी विद्रोही होते हैं वो मांगने के लिए जाते हैं। इसलिए वो डर गया था कि सही जल कुछ मांगने के कब कल परसों मिल जाएगा, आज का मैं नहीं, आज मैं बहुत तो प्रहरी ने उनको कह दिया, वो लौट गया और तीन चार दिन के बाद में फिर आया, फिर आ जाने का फिर वही आपस आ गया। फिर उसको मैं कह दिया जो सबके पीछे मिल रहे, तो वो राजा से आकाश होकर के चला गया रानी के पास में और खबर दिया, महारानी जी मैं एक संत हूँ आपसे मिलना है। तो पुरुष लोग बड़े हो सकते हैं कि निष्ठुर हों, किंतु पत्नियां भी थी बहुत सुशील होती है, भिक्षा मांगने पर भी मथुरा के ब्राह्मणों ने कृष्ण को नहीं खिलाया और उनकी पत्नियों ने थाल में परोस करके भर भर करके कृष्ण के पास, इसे वो पछताने लगे कि हमारी विद्या को अधिकार है, हमारे ब्रह्म होने का अधिकार है, यज्ञ करने का अधिकार है, ये स्त्रियां कुछ भी नहीं जान करके कृष्ण की इतनी सेवा की और हम लोग ऐसे दुर्भाग्य जो उस कृष्ण परब्रह्म से वंचित रह गए। इसलिए रानी के पास में गया, रानी ने बहुत जल्दी से जाओ जल्दी से बुलाओ, सबका आसन देकर से बैठाया, बड़े प्रेम से पूछा महात्मा जी आप क्या चाहते हैं। पर मैं कुछ चाहता नहीं, मैं भगवत भजन करता हूँ, किंतु साथ साथ में मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर कुछ जानता हूँ, ये सब हाथ देखना रेखाएं जानना जानता हूँ। मैंने विचार किया ये राजा बहुत ही भले आदमी है, किंतु 15 दिन में इनकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए आपको सूचित करने के लिए राजा ने अवकाश नहीं दिया या। इसलिए आपको कहने के लिए राजा ये अब 15 दिन में से 5 दिन तो निकल गए, अब 10 दिन बाकी है, इसमें घूम आना है, इसलिए जो कुछ करना है आप प्रस्तुत होकर के करें। रानी घबरा गई और राजा को बुलवाया, इनसे तो महात्मा जी से तो नहीं मिल सका, किंतु रानी के ऑर्डर को वो डिनाई नहीं कर सका, वो आया क्या और इतने में ये तो महात्मा जी तो वहां से चंपट हो गए चले गए। वो राजा आया किसके मुख को जल्दी से मिला, तो एक महात्मा आया वो कह रहा था कि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, भगवत भजन करता हूँ, तो ये राजा जी अब 10 दिन का अंदर मिल जाएंगे, मरेंगे अवश्य मरेंगे, और ये कह सकते हो चला गया, जो कुछ करना है करो, उन्होंने कहा क्या मैंने गलती की, मैंने उससे मिला नहीं, घुड़वाया तो देखो फिर मुंडन होगा, यहाँ पर कुंड होगा, गले में तुलसी होगी, हाथ में माला होगा, हरिनाम करता होगा, जब इसे ढूंढा गौर वर्ण का होगा, गोरा रंग गुलाब, फिर से सोचे नदी के किनारे देखा जो बैठा था उसको बुला रहा है, महात्मा जी आपने ये कहा कि मैं मर जाऊंगा 15 दिन में, तो जरूर मरेंगे, गारंटी है हमको, यही परख दीजिए अंत करके और देखिए जरूर आप, कोई भी बचा नहीं सकता, इस समय ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो बचा दे, राजा घबरा रहा है कि क्या कर मैं क्या करूं, यही तो मैं कहने आया था जो जाओ तुम जो कुछ करना है।